संख्या एक, प्रस्तावना। प्रेमचंद उस अर्थ में निबंधकार नहीं है जिस अर्थ में बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त हैं। उनके निबंधों में उस प्रकार का लालित्य तत्व भले न हो, परंतु भाषा का प्रयोग अपने समय को लोकहित में रूपांतरित करने के लिए वे वैसे ही व्यक्तिक आग्रह के साथ करते हैं जैसे भट्ट जी आदि कर रहे थे। अपने पाठकों को अपने पक्ष में करना प्रेमचंद की सभी रचनाओं की विशेषता है, निबंधों की तो है ही। वे कांग्रेस के बकायदा सदस्य थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व पर उनकी आस्था थी, परंतु कांग्रेस की नीतियों के प्रचार विस्तार तथा स्वीकृति के साथ ही साथ दलबंदी, स्वार्थी तत्वों की बढ़ोतरी और गलत दिशा संकेतों की निराला की तरह ही वे निंदा करते थे। सन 1931 तक कांग्रेस से उनका मोह भंग होता नजर आने लगता है। उस समय के अनेक तेजस्वी लेखक संगठनों में आस्था के बावजूद आँख कान खुले रख कर संगठनों को प्रदूषण से न केवल बचाए रखने का प्रयत्न करते थे बल्कि अपनी समझ के आधार पर समान भाव से सबका विश्लेषण करते थे। प्रेमचंद के निबंधों में यह रचनात्मक ईमानदारी सर्वत्र मिलती है। उन्होंने निबंध को विधा के रूप में अपने समय को पहचानने और व्याख्यायित करने का माध्यम ही नहीं बनाया बल्कि एक पत्रकार की तरह पराधीनता से मुक्ति के लिए टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं और आलेखों को स्वतंत्रता संघर्ष के एक पहलू के रूप में कलम के सिपाही की तरह ग्रहण किया। विविध प्रसंग के तीन भागों में संकलित टिप्पणियां, लेख, समाचार परख, प्रतिक्रियाएं इसकी प्रमाण हैं। उनकी अनेक कहानियों में इस प्रकार का आह्वान परख तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक तत्व संवादात्मक रूप में पाया जाता है। उपन्यासों की रचना में कलम के सिपाही का सिपाही भाव या राजनीति के आगे चलने वाली मशाल का आगे देखू तत्व कितना है और इस भाव ने रचना की बनावट और बुनावट पर क्या असर डाला है, यह अलग विश्लेषण का विषय है। प्रेमचंद्र के लेखों और टिप्पणियों में प्रारंभ से अंत तक गांव और शहर, संपन्न किसान और साधारण किसान, जमींदार और मजदूर, पंडे पुजारी, महंतों द्वारा शोषित भूखे नंगे भारतीय, सुदखोर और कर्जदार महाजन और किसान, देशी और विदेशी, पराधीनता और स्वाधीनता, सामंत और पूंजीपति आदि का सहज परंतु विवेकपूर्ण अंतर अनेक रूपों में रचनात्मक विश्लेषण के कारक के रूप में मिलता है। उनका जगत सामान्यों का जगत है जहाँ से विशेष और सामान्य की दुनिया साफ साफ नजर आती है। जून और नवंबर 1905 में जमाना में उर्दू में छपे उनके लेखों के कुछ उद्धरण नीचे दे रहा हूँ। प्रेमाश्रम, रंगभूमि और गोदान में किसानों के चित्रण और अवध किसान आंदोलन आदि को साथ मिलाकर देखने से प्रेमचंद और उनके समय को समझने में खासी मदद मिलती है। गोदान के होरी की दुनिया को 1905 के इन उदाहरणों की दुनिया से मिलाकर देखना चाहिए। पृष्ठ संख्या 2, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। देहाती आम तौर पर ईमानदार होते हैं, सौदा ले लिया तो उसकी कीमत अदा करने में गड़बड़ी नहीं करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनका ईमान जरा डगमगाया भी तो वह डरपोक ऐसे होते हैं कि दो चार धमकियों में सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। बेचारा किसान सूद पर कर्ज लेता है और निश्चित समय पर चीज की कीमत अदा करता है। जब विलायतियों को वसूली में कोई दिक्कत नहीं होती है तो कोई वजह नहीं है कि हमारे देसी एजेंटों को इस काम में कोई दिक्कत हो। बस जाड़े में चीज दे आए, उसकी कीमत फसल तैयार होने पर वसूल ली, न कोई ठक ठक न कोई बखेड़ा। व्यापार का यह ढंग उससे कहीं ज्यादा लाभदायक और देशभक्तिपूर्ण है जिसको हुंडी कहते हैं। व्यापार के इस ढंग से चाहे महाजन का फायदा हो, मुल्क या कौम का सरासर नुकसान होता है क्योंकि बेचारे किसान को दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। उधर तो मुगल सौदागरों को एक का डेढ़ दिया और इधर अपने महाजनों को एक का सवाया देना पड़ा। बेचारे की छोटी सी आमदनी महाजनों ही भर की हो गई। डैश जमाना जून 1905 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अगर शहरों में विदेशी चीजों का रिवाज कम होने लगे तो देहातों में आप से आप कम हो जाएगा। हम अपने सूबे के तर्जुबे से कह सकते हैं कि यहाँ देहाती ज्यादातर जुलाहों का बना हुआ गाढ़ा इस्तेमाल है और जाड़े में गाढ़े की दोहरी चादरें, उनको परदेसी कपड़ों की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज डैश जमाना नवंबर 1905। प्रेमचंद की दृष्टि मूलतः किसान केंद्रित है, वही उनका मापदंड है, परंतु इस मापदंड में भी गरीब, दलित और मजदूर को वे नहीं भूलते हैं। सामंती विचार तंत्र के सांस्कृतिक पहलुओं और उनके प्रभावों को वे नजरअंदाज नहीं करते हैं। हिंदू समाज के विभत्स दृश्य और साहित्य में घृणा का स्थान में इस तंत्र की सर्व सत्यानाशी और शोषक प्रवृत्ति को आक्रोश के साथ न केवल वे उद्घाटित करते हैं, बल्कि उसकी समाप्ति की वकालत करते हैं। इन निबंधों में उनके शब्द भाषण कला के जबरदस्त उदाहरण लगते हैं, जो उनकी नियत को शिद्दत के साथ प्रस्तुत करते हैं। पुराना जमाना नया जमाना में जमींदारों और तालुकेदारों को किसानों के मामले में सबसे अधिक दोषी बताते हुए कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट उचित है कि तात्कालिक हानि की चिंता न करके किसानों की भलाई और सुधार की कोशिश करें, स्वेच्छा से उन अधिकारों से हाथ खींच ले जो उन्हें किसानों पर प्राप्त है, उनसे बेगार लेना छोड़ दे, उनके साथ आदमियत का बर्ताव करें, इजाफा और बेदखली से परहेज करें ताकि जनता के दिलों में उनकी इज्जत और उनके प्रति श्रद्धा हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह नव जागरण कालीन दृष्टि उस युग के स्वदेशी आंदोलन, विदेशी पूंजी और मुक्त व्यापार के प्रति लिखे जा रहे अनेक लेखों और भाषणों में व्यक्त होती है। हिंदी प्रदीप, सरस्वती, मर्यादा, मॉडर्न रिव्यू आदि पत्रिकाओं को पढ़ने से लगता है कि 19वीं शताब्दी का अंतिम और 20वीं शताब्दी का पहला दशक बौद्धिक ऊर्जा के विस्फोट का काल है। प्रेमचंद इसी ऊर्जा के विस्फोट के प्रमाण हैं, जो उनकी रचनाओं में प्रवाहित है। सुधार सुधार से निनादित आकाश में प्रेमचंद धीरे धीरे अंधेरे स्थलों की गहरी पहचान करते हैं और फिर उन जगहों से उसे हटाने के प्रयत्न में यथाशक्ति लग जाते हैं। अंधेरे की यह खोज वैसे तो रचनाकार की आंतरिक ज्वाला से ही संभव हो पाती है। निबंधों में वह ज्वाला आपको कभी कभी झुलसा भी सकती है, क्योंकि अंधेरा अभी हटा नहीं है, बल्कि कुछ जगह थोड़ा घना ही हुआ है, शायद कोहरे के कारण। प्रेमचंद को भी अंधेरे में मुक्ति बोध की तरह बहुत कुछ समान ही दिखता है। एक अर्थ में वे भी आत्मसंभव अभिव्यक्ति की खोज में ही लगे हैं। पृष्ठ संख्या 3। प्रेमचंद के लेखों में स्वाधीनता महज स्वतंत्रता या सत्ता हस्तांतरण का पर्याय नहीं है, वह एक सकारात्मक भाव है जिसे व्यक्ति को परिवार में संस्कारित करना पड़ता है। इसीलिए वे बच्चों को स्वाधीन बनाने की शिक्षा और संस्कार देना चाहते हैं। स्वाधीनता का संघर्ष एक लंबा संघर्ष है। यह चेतना लेखों और टिप्पणियों में ही नहीं, उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों में भी क्रमशः इस हद तक बढ़ती है कि उपन्यास की रचना में कोई न कोई पात्र इसे राजनैतिक न्याय और सामाजिक न्याय के रूप में परिभाषित करने लगता है। देवी दीन खटिक, मिर्जा घुरदेश और सूरदास आदि इसे अनेक रूपों में दिखाते और कहते हैं। स्वराज्य में प्रेमचंद अपने समय की गांधीवादी शब्दावली की व्याख्या करते हुए भी स्वावलंबन आदि पर स्वाधीनता की दृष्टि से बल देते हैं। स्वाधीन होने के लिए प्रेमचंद की दृष्टि में केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। धर्म और अर्थ की पराधीनता औपनिवेशिक गुलामी से कम खतरनाक नहीं है। प्रेमचंद शताब्दियों से शोषित चेतना विलयित लोगों को देखकर धर्म के भयानक शोषण पर बार बार प्रहार करते हैं। भारतीय समाज में धर्म के माध्यम से होने वाले शोषण को जितना प्रेमचंद ने रेखांकित किया है, उतना किसी ने नहीं। मेरी जानकारी में बालकृष्ण भट्ट के बाद वे एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि समाज में जितनी अनीति है उसमें सबसे घृणित धार्मिक पाखंड और धूर्तता है। ब्रैकेट में जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ईश्वर के नाम पर उनके उपासकों ने भूमंडल पर जो अनर्थ किए हैं और कर रहे हैं, उनके देखते इस विरोध को पहले ही उठ खड़ा होना चाहिए था। आदमियों को रहने के लिए शहरों में स्थान नहीं है, मगर ईश्वर और उसके मित्रों और कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े मंदिर चाहिए। आदमी भूखों मर रहे हैं, मगर ईश्वर अच्छे से अच्छा पहनेगा और खूब विहार करेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट में साहित्य की प्रगति। धर्म के जड़ और शोषक तत्व का यह उद्घाटन उनकी रचनाओं में अनेक रूपों में है। गोदान के नामकरण और कथ्य में यह शोषण के अदृश्य हाथों के रूप में अनुस्यूत ही है। अर्थ के शोषण में प्रेमचंद संपत्ति को साम्यवाद के प्रभाव के कारण 1932 से 1933 तक धर्म आदि के शोषण का भी कारण मानने लगते हैं। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। हमारे जितने मत हैं वे सभी इसी विद्रोह के स्मारक हैं, किंतु उन विद्रोह में कलह की जो मुख्य वस्तु थी वह ज्यों की त्यों बनी रही। संपत्ति में हाथ लगाने किसी को या तो साहस ही नहीं हुआ या किसी को सूझी ही नहीं। जो इन सारी दुर्व्यवस्थाओं का मूल था वह इतने सौम्य वेश में धर्म और विद्या और अनीति के आवरण में महान बना हुआ बैठा था कि किसी को उसकी ओर संदेह करने की प्रेरणा भी न हुई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद इन दोनों पुरुषार्थों की भूमिका से परिचित नहीं हैं। वे इनके अंध विरोध या अविवेकपूर्ण विरोध के खिलाफ लिखते हैं, जो बौद्धिक प्रतिक्रिया का लक्षण है। सामाजिक परिवर्तन भारतीय प्रकृति और मूल्यों के व्यापक दायरे के भीतर हो, दुखी पीड़ित गरीब मजदूर किसानों का शोषण बंद हो, परंतु इसके साथ ही साथ मानवीय संबंध अधिक उज्जवल रूप में बने रहें, यह उनकी आकांक्षा है। उनके लेखों में इसके कारण कभी कभी परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। सुसमंजस बौद्धिकता की कमी मिलती है, परंतु समग्र रूप में पीड़ित विवेक चेतना के इसी दबाव के कारण वे मूल्यवादी हो जाते हैं। इस अर्थ में वे आदर्श को सदा सामने रखते हैं और रचना के स्तर पर इस पर बल भी देते हैं। पृष्ठ संख्या 4। इसे केवल द्विवेदी युगीन नैतिक परिवेश मानकर मानवीय मूल्यों के प्रति भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता को नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि एक टिप्पणी में वे संस्कृति नाम पर किए जाने वाले दलितों आदि के शोषण का संकेत करते हैं, प्रेमचंद की नैतिकता द्विवेदी युगीन नैतिकता से भिन्न है। वह व्यापक अर्थ में सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन चाहती हैं। वह कुछ अर्थों में भारतेंदु युगीन गहरी सामाजिक चिंता से बेचैन है और कुछ अर्थों में धर्म और अर्थ के बंधनों से मुक्त होकर स्वाधीनता के लिए व्याकुल है। प्रेमचंद न तो भारत व्याकुल है और न अंध पश्चिम विरोध। उनकी निगाह में भारत का नंगा भूखा किसान और मजदूर मूल्य बीज के रूप में विद्यमान रहता है, जो उनकी रचनाओं में सर्वत्र यथार्थ को रंगता है और स्थापित मान्यताओं तथा आदर्शों को आंकता रहता है। मानव चरित्रों के रहस्य को उद्घाटित करना, यथार्थ को किसी आइडियल के लिए प्रयुक्त करना दोनों उनके रचनाकार के चरित्र परक पक्ष हैं। उद्देश्य के प्रति समर्पित होना, मनुष्य की विवेकपूर्ण विजय को रेखांकित करना तथा ढोंग पाखंड अन्याय और शोषण को बारीकी से बेनकाब करना, यह प्रेमचंद के समस्त कृतित्व का प्रमुख कार्य रहा है। परंतु इतना ही उन्हें लेखक नहीं बनाता और न इसके आधार पर वे वकील की तरह अपना मुकदमा तैयार करते हैं। भले ही वह साहित्यकार को ईश्वर की अदालत में जनता का वकील मानते हों, उनके समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की समग्र चेतना में सारी शक्ति को लगाकर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करना चाहे अनचाहे प्रमुख कार्य था। प्रत्येक लेखक किसी न किसी तरह यह कार्य कर रहा था। प्रेमचंद ने कहानियों, उपन्यासों पर लिखे लेखों तथा साहित्य पर दिए गए भाषणों और टिप्पणियों से साहित्य की सौ उद्देश्यता को न केवल रेखांकित किया है, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने का प्रयत्न किया है। यह जरूर है कि इस प्रकार की स्थापनाओं में भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विकास दिखता है। उनकी स्थापनाओं में क्रमशः परिवर्तन हुआ है। उनकी टिप्पणियों और उनकी रचनाओं को एक साथ रखकर देखने से कुछ महत्वपूर्ण नतीजे भी निकाले जा सकते हैं। कहानी पर लिखे पहले लेख में कहानी और उपन्यास का अंतर, आकार और जीवन के विस्तार को समेटने के प्रयत्न को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रेमचंद ने एक महत्वपूर्ण स्थापना की है कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, बल्कि दीपक है जिसका काम प्रकाश फैलाना है। प्रकारांतर से इसका अर्थ अंधेरे को दूर करना है। उन्होंने लिखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्य चूंकि आदर्शवाद का समर्थक है, इसीलिए हमें भी आदर्श की ही मर्यादा का पालन करना चाहिए। हाँ, यथार्थ का उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिए कि सत्य से दूर न हो। कहानी कला 2 में प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण और अनुभूतियों की मात्रा के आधिक्य को कहानी की विशेषता मानते हैं, बल्कि यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। लेख के अंत में हिंदी कहानी के विकसित संदर्भों को ध्यान में रखकर प्रेमचंद ने प्रभावात्मकता, आकस्मिकता, तीव्रता, संवेदनात्मकता, मित कथन और मनोभाव के प्रति संकेतात्मकता को कहानी का गुण माना है, जो कहानी विधा में कलात्मकता के प्रसार का प्रमाण है। उन्होंने स्वयं ही खुलासा किया है कि अब कहानी का मूल्य उसके घटना विन्यास से नहीं लगाते। हम चाहते हैं कि पात्रों की मनोगति स्वयं घटनाओं की सृष्टि करे। पृष्ठ संख्या 5। घटनाओं का स्वतंत्र कोई महत्व नहीं रहा, उनका महत्व पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। खुलासा यह है कि कहानी का आधार अब घटना नहीं, अनुभूति है। प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह, नशा, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानियां हैं। कहानी कला 3 में बौद्धिकता, मनोविज्ञान, कोमल तथा पवित्र भावनाओं का प्रोत्साहन और सत्य सेवा आदि देवत्व के अंशों का जागरण, संघर्ष और आत्मिक भाव के प्रकटीकरण को कहानी का आधार माना गया है, जो पहले दोनों लेखों में नहीं थे। परंतु इन आधारभूत तत्वों या विशेषताओं के कारण होने वाले परिवर्तन के बावजूद जीवन सत्य का होना आवश्यक माना गया है, जो प्रकारांतर से अनुभूति या अनुभव का सामान्यीकरण है। वैसे तो अनुभव भी निष्कर्षात्मक होता है, परंतु ज्ञानात्मक संवेदन बनने पर वह जीवन सत्य हो जाता है। प्रेमचंद जैसे मास्टर कथाकार द्वारा कथा समयों के इस परिवर्तन का रेखांकन उनकी कहानियों पर तो प्रकाश डालता ही है, क्योंकि ये लेख एक अर्थ में संकलनों की भूमिकाओं के रूप में है। उनके समय के कहानी के होने वाले परिवर्तनों को गंभीरता से रेखांकित भी करता है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों पर दृष्टिपात करने से प्रेमचंद की वस्तुपरक पहचान को रेखांकित करना आवश्यक हो जाता है। इन तीनों निबंधों में हिंदी कहानी के विकास की 3 मंजिलों का संकेत तो है ही, रचनाकारों के विकास का एक प्रतिमान भी है। मानव मन के रहस्य को खोलना उपन्यास और कहानी दोनों में वे आवश्यक मानते हैं, जिसका संबंध मनोविज्ञान से है। साहित्य और मनोविज्ञान निबंध में साहित्य के वर्तमान युग को न केवल मनोविज्ञान का युग कहते हैं, बल्कि चरित्रों के चरित्रण में उनकी सहायता आवश्यक मानते हैं। उनके समय में मनोविज्ञान का यह प्रभाव प्रसाद निराला और रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं और विचारों में ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियों में और लेखों में मिलता है। यह मनोविज्ञान मनोवेगों और मनोविकारों के माध्यम से यथार्थ हेतुओं की ओर प्रस्थान या प्रत्यक्ष के पीछे क्रियाशील प्रवृत्तियों की पहचान के रूप में ही प्रायः सक्रिय है। फ्रायड और युंग के अन्वेषणों का सीधा उल्लेख भले न हो, परंतु प्रेमचंद के गबन गोदान और कायाकल्प में इसका भी प्रभाव स्पष्ट है। उनकी नैतिकता कई स्थापनाओं के स्वीकार से रोकती है। कुछ अर्थों में एक वर्जित स्पर्श उस युग के सभी लेखकों में है। जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल में मनोविज्ञान और यथार्थ के अनेक रिश्ते नए रूपों में रचनाओं के ताने बाने में मिलते हैं। उपन्यासों पर लिखे गए लेख उपन्यास लेखकों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, न कि पाठकों या आलोचकों को। ये लेख हिंदी आलोचना में कहानी और उपन्यास पर लिखे गए हैं, एक प्रकार से पहले महत्वपूर्ण लेख भी हैं। इनका उद्देश्य उपन्यासों की अंधाधुन लेखन की प्रवृत्ति को सुरुचिपूर्ण और रचनात्मक बनाना है, एक प्रकार का मानक निर्धारित करना है। इन लेखों का कार्य नए लेखकों को उपन्यास लिखने के लिए आवश्यक तैयारी करने की शिक्षा देना और विधा को सामाजिक जीवन के चित्रण के लिए उपयुक्त बनाना है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना उनकी दृष्टि में उपन्यास का मूल तत्व है, और इस तत्व की मीमांसा में उन्हें यथार्थवादी और आदर्शवादी दो दृष्टिकोण दिखलाई पड़ते हैं। वे यह मानते हैं कि यथार्थ का अर्थ वह नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वह है जो दिखाई पड़ रहे के पीछे होता है, जो हम नहीं देख पाते। वे सिद्धांतों की पूर्ति मात्र के लिए चित्रांकन की निर्जीवता और आदर्शहीन चित्रांकन की निरर्थकता से बचने के लिए ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। पृष्ठ संख्या 6। उनके अनुसार आदर्श को सजीव बनाने ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। सद्विचार और सद्व्यवहार से पाठकों को मोहित करने का गुण यदि उपन्यास के चरित्रों में न हुआ तो उनके अनुसार वह उपन्यास दो कौड़ी का है। साहित्य का यह व्यापक उद्देश्य प्रेमचंद्र को निरंतर मूल्यवादी रचनाकार बनाए रहता है। अंत में उनकी आस्था डगमगाती दिखती भी है तो मनुष्य पर से नहीं, बल्कि उन आदर्शों के डगमगाने से जो चुनाव के समय और चुनाव के बाद कांग्रेसी सरकारों के आचरण के कारण परिलक्षित होते हैं। जीवन में साहित्य का स्थान में उद्देश्य परकता यथावत विद्यमान है। कैसा साहित्य लिखना चाहिए और उसके लिए कैसी तैयारी अपेक्षित है, साहित्य की राष्ट्र निर्माण में कैसी भूमिका होनी चाहिए आदि विषय किसी भी ऐसे राष्ट्र के विषय होते हैं जिस पर विजयी या शासक वर्गीय संस्कृति के प्रभाव का खतरा हो। प्रेमचंद के प्रारंभिक निबंधों में विशेषकर 1934 ईस्वी के पहले इस प्रकार सुरक्षा परक मूल्यवादी भाव मिलता है। इसमें कूड़ा करकट साफ करके सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ और मंगलकारी साहित्य के निर्माण का तत्व प्रमुख है, जिसे साहित्य शिक्षा के साथ मंगल कामना मूलक राष्ट्रीय हितकारी भाव कह सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से देव तुल्य है। जमाने के छल प्रपंच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है, उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भावों को स्पंदित करके, मन के कोमल तारों पर चोटें लगाकर, प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके। या साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए, या साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है, या भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और आदर्श है आदि स्थापनाएं साहित्य का उद्देश्य की स्थापनाओं से काफी भिन्न है। साहित्य का उद्देश्य में भारतीय संस्कृति का वर्गीय दृष्टि से मूल्यांकन है और नश्वरता, आध्यात्मिकता और कलात्मकता को त्याज्य माना गया है। कहा जा सकता है कि प्रेमचंद अपने निबंधों में साहित्य का आचार शास्त्र भी निर्मित कर रहे थे और रचना शास्त्र भी। उनके साहित्य संबंधी लेखों में आदर्शोन्मुख उपादान तत्व हैं। प्रगतिशीलता को साहित्य मात्र का गुण मानते हुए प्रेमचंद साहित्य को जीवन का प्रतिबिंब मानने के साथ ही साथ उसमें दीपकत्व की सामर्थ्य भी देखना चाहते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश और समता, न्याय आदि मूल्यों की साहित्य में प्रतिष्ठा को वे कभी नहीं भूलते हैं। प्रेमचंद के साहित्य निबंधों में कला पर विशेष बल नहीं है, परंतु उनका निषेध भी नहीं है। प्लाट आदि की विशेषताएं और प्राथमिकताओं पर बल देने के साथ ही साथ भाव परिमार्जन, भाव संस्कार, देवत्व की प्रतिष्ठा, आत्मा का प्रकाश, अनुभूति की तीक्ष्णता, मनोवेगों के चित्रण, मनोविकारों या मनोप्रवृत्तियों के प्रभाव का अंकन आदि के लिए भाषा का विशेष प्रयोग आवश्यक है। कला कला के लिए जैसे प्रचलित वाक्यों को प्रेमचंद आवश्यक नहीं मानते हैं, उतनी ही कला उन्हें आवश्यक लगती है जितना भोजन में मसाला। मसाले के बाहुल्य से भोजन का स्वाद और उपयोगिता कम हो जाती है। उनके अनुसार जो स्वाभाविक है वही सत्य है और स्वाभाविकता से दूर होकर कला अपना आनंद खो देती है और उसे समझने वाले थोड़े से कलाविद ही रह जाते हैं। उसमें जनता के मर्म को स्पर्श करने की शक्ति नहीं रह जाती। उपन्यास में प्रेमचंद यह मानते हैं कि साहित्य का सबसे ऊंचा आदर्श यह है कि उसकी रचना केवल कला की पूर्ति के लिए की जाए। कला कला के लिए के सिद्धांत पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। पृष्ठ संख्या 7। वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित हो। ईर्ष्या और प्रेम, क्रोध और लोभ, भक्ति और विराग, दुख और लज्जा, ये सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं की छटा दिखाना साहित्य का परम उद्देश्य है और बिना उद्देश्य के तो कोई रचना हो ही नहीं सकती। कला कला के लिए सिद्धांत को वे अघाए हुए समाज का गल्प मानते हैं। खाली समय में महीना कातना संभव होता है। दलिद्रता की चित्कार और हाहाकार की भीषणता में कला का उपयोग रचना की स्वाभाविकता में ही है। वे एंगेथ्स की भांति उपन्यासों के विषय में चरित्रों को किसी मत का भोंपू बनने से रोकते हैं। उनके अनुसार उपन्यासकार को इतना प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि उसके विचार परोक्ष रूप से व्यक्त हो। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष की हैसियत से 1936 ईस्वी में दिए गए भाषण साहित्य का उद्देश्य में प्रेमचंद कला के लिए सिद्धांत की पूर्णतः साम्यवादी व्याख्या करते हैं। स्वाभाविकता, मानसिक परिधि का विस्तार, जीवन की आलोचना जैसे पारिभाषिक वाक्यों को साहित्य के उद्देश्य के अर्थ में प्रयोग करते हुए वे कहते हैं कि कला नाम था और अब भी है, संकुचित रूप पूजा का, शब्द योजना का, भाव निबंध का, उसके लिए कोई आदर्श नहीं, जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं, भक्ति, वैराग्य, आध्यात्म और दुनिया से किनारा कशी उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं हैं। जीवन संग्राम प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य के लिए आवश्यक पारिभाषिक शब्द है, जिसका प्रयोग वे परवर्तीय काल में प्रायः करते हैं। प्रेमचंद के इन लेखों और टिप्पणियों में उनके समय के बौद्धिक वातावरण की हलचल ही नहीं है, भविष्य की संभावनाओं की आहट भी है। वे अंतर विरोध भी हैं, जो प्रेमचंद के ही नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक के ही हैं। वे अंतर विरोध प्रसाद प्रेमचंद निराला की रचनाओं में ही नहीं, महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि के लेखों, भाषणों तथा आत्मकथाओं में भी उजागर हैं। उस समय की पत्र पत्रिकाओं को ध्यान से देखने पर स्वराज्य की आध्यात्मवादी, यथार्थवादी और क्रांतिकारी परिभाषाएं एक साथ मिलेंगी। रमा शंकर अवस्थी, सत्यभक्त आदि के साम्यवाद और वोल्शेविक पर लेख रुद्र दत्त भट्ट के हिंदुओं के जागरण और एकता के उद्घोष के साथ ही मिलेंगे, परंतु प्रेमचंद के निबंधों और लेखों में बिखरे हुए अनेक वाक्यों और स्थापनाओं को उनकी रचनाओं के साथ रखकर देखने पर उनका अर्थ स्पष्टतः आदर्शोन्मुखी और सो उद्देश्य नजर आने लगता है। अनेक ऐसे वाक्य इन लेखों में ऐसे हैं जो छायावादी काव्य संसार के लगते हैं। वेदना, अनुभूति, आत्मा का प्रकाश, आध्यात्मिकता, स्वाभाविकता, मनोवृत्तियों और मनोभावों का चित्रण, देवत्व की प्रतिष्ठा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रेमचंद की दुनिया के शब्द लगते ही नहीं। प्रेमचंद अपने युग के मुहावरे में अपने समय को, जीवन संग्राम को परिभाषित भी करते हैं और उस मुहावरे को तोड़ने का अनथक प्रयत्न भी करते हैं। इस जोर आजमाइश का प्रमाण इन लेखों में ही नहीं, उनकी कृतियों में मिलता है। प्रारंभिक रचनाओं के अपराजेय संकल्प में गोदान, कफन और मंगलसूत्र तक संशय की सेंध लगी हुई दिखती है। रचनाओं की प्रकृति में कुछ बेतरतीबपन उभरता है, असामंजस्य दिखने लगता है। कांग्रेस पार्टी से भी उनका मन उचट जाता है। भगत सिंह की फांसी के प्रकरण पर प्रेमचंद दुखी हैं, सरकार के दृष्टिकोण से असहमत हैं, परंतु कांग्रेस के उन लोगों के खिलाफ भी हैं जो भगत सिंह के प्रकरण पर गांधी जी के विपरीत राय रखते हैं। यह सब पूरे राजनैतिक वातावरण से अलग होने के प्रमाण है। पृष्ठ संख्या 8। हिंदी और उर्दू के मामले में भी प्रेमचंद में परिवर्तन आए हैं। उर्दू से हिंदी में आने के बाद वे हिंदुस्तानी के समर्थक हो गए थे। डॉक्टर ताराचंद और प्रेमचंद के मत एक थे। प्रेमचंद की रचनाओं में सारा भारत अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मौजूद है। वह सच्चे अर्थों में भारतीय लेखक हैं। इसीलिए नहीं कि उन्होंने सामान्यीकरणों की रचनात्मक अभिव्यक्ति की है या टाइप चरित्रों का प्रयोग किया है, बल्कि इसलिए कि उनकी रचनाओं में हमारा समय और हमारा देश है, भारतीय किसान और मजदूर हैं। अंग्रेज चरित्र भी प्रेमचंद की रचनाओं में जैसे सोफिया, क्लार्क आदि अंग्रेज कम, भारतीय अधिक लगते हैं। विविध प्रसंग की टिप्पणियों को देखने से उनकी रचनात्मक चिंता के दायरे का पता चलता है। देश के हर कोने की समस्या पर प्रेमचंद की अपनी राय है। बंबई मिल मजदूरों की हड़ताल और देशी विदेशी माल पर लगे करों पर वे एक साथ टिप्पणी करते हैं। किसी भी प्राकृतिक प्रकोप पर प्रेमचंद का हाहाकार और उनकी अपील आपको अखबारों में मिलेगी। भूकंप को पाप का कारण मानने की महात्मा गांधी के कथन की उन्होंने वैज्ञानिक आधारों पर तीखी आलोचना की है। इस प्रकार से विस्तृत दिमाग का असर उनके लेखों और टिप्पणियों में है। वे हिंदुस्तान के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को सत्ता का समर्थक मानते थे। अपने उपन्यासों और कहानियों में साधारण लोगों को उनकी तुलना में यथार्थवादी, सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर, निर्भय और भरोसेमंद चित्रित किया है। 23 अप्रैल 1930 को दया नारायण निगम को लिखे एक खत में लिखते हैं कि इस मौके पर साफ जाहिर हुआ है कि अगर 2% अंग्रेज ख्वा असाहब तहरीक के साथ है तो 18% उनके मुखालिफ हैं। कौमी एतबार से यूनिवर्सिटियों और स्कूलों पर कौम का जितना रुपया खर्च हुआ है वह करीबन जाया हो गया। यह लोग सरकार के आदमी हुए, कौम के नहीं। गैर अंग्रेजी दा कारोबारी और पेशेवर तबकों ही ने इस तहरीक में जान डाली है। अगर तालीम याफ्ता आदमियों के भरोसे मुल्क बैठा रहे तो शायद कयामत तक उसे आजादी नसीब नहीं होगी। कानून पेशा, तबीब पेशा, प्रोफेसर और सरकारी मुलाजमीन, इन सब ने जितनी गुलामाना जहनियत का पता दिया है उसकी मुझे उम्मीद न थी। यह तबका अपनी खैरियत गवर्नमेंट का इक्तदार कायम रखने में समझता है। वह एक लम्हे के लिए भी अपनी आइश आइश और दुनिया तलबी को फरामोश नहीं कर सकता। जर उसका दीन और ईमान है, वह या तो आजादी चाहता ही नहीं या उसके लिए कीमत न देकर दूसरों पर तकिया करना ही अपनी शान के मुनासिब समझता है। इस पुस्तक में संकलित निबंधों और लेखों से प्रेमचंद के दृष्टिकोण को समझने में, उनकी रचनाओं को विवेचित करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि प्रेमचंद के समय को भी परिभाषित करने में सुविधा होगी। आजादी या स्वाधीनता का क्या अर्थ प्रेमचंद समझते थे और राजनीतिक हलकों में उन्हें क्या दिख रहा था, इसमें काफी फर्क है। लेखों को पढ़कर उस फर्क को पहचाना जा सकता है। उनकी रचनाओं से उनकी तुलना की जा सकती है। नवजागरण कालीन अन्य रचनाकारों की तरह वे समग्र चेतना के रचनाकार थे। वे राजनीति में न केवल रुचि रखते थे बल्कि उसमें हिस्सा लेते थे। कांग्रेस के जलसों में शामिल होते थे। अन्य लेखकों के प्रमाण कम हैं। इसीलिए उनकी टिप्पणियों और लेखों की एक अतिरिक्त विश्वसनीयता भी है। बाहर का स्वतंत्रता संग्राम प्रेमचंद रचनाओं के भीतर भी लड़ रहे थे। वह बाहर का अभ्यंतिकरण मात्र नहीं है, अंतर का बाह्य भी है, देखा हुआ ही नहीं है। पृष्ठ संख्या 9, सोचा समझा और जांचा परखा भी है। उनकी भाषा का तेवर और वाक्य विन्यास अंग्रेजी वाक्य विन्यास का हिंदी रूपांतर नहीं है बल्कि कौम के मानसिक विकास का कायंतरण है। भाषा रुकी हुई या बाधा डालने वाली अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी है। वे अपरिचित को भी पारिवारिक और परिचित की तरह प्रस्तुत करते हैं। वस्तुपरक विषय प्रधान लेखों में भी गहरी आत्मीयता है, अलगाव नहीं है। इसीलिए वे हमारे पूर्वज ही नहीं, समकालीन है। सत्य प्रकाश मिश्र।